आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एनएक्सटी चोटी कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत विकसित भारत की जानिब से अपने सफर में एक अहम मोड़ पर है। हुकूमत ने पार्लियामेंट में यकीन दहानी कराई है कि मगरबी एशिया जंग के माबेन भारत के पास तवानाई की फराहमी इत्मीनान बख्श है। पेट्रोलियम के मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि घरेलू एलपीजी की पैदावार में 28% का इजाफा किया गया है। मरकज घरानों को यकीनी फराहमी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने अपने ईरान के हम मनसब के साथ जहाजरानी के तहफ्फुज और भारत की तवानाई की सिक्योरिटी पर बातचीत की। वजारत खारजा ने कहा है कि हुकूमत ने बहुत से भारतीय बाशिंदों को ईरान से महफूज मकाम पर मुंतकिल किया है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई ने कहा है कि खित्ते में तमाम अमरीकी फौजी अड्डों को फौरी तौर पर बंद किया जाना चाहिए। उन्होंने आबनाए हुरमुज को बदस्तूर बंद रखने के बारे में इंतबाह दिया। आईएमडी ने कल मध्य प्रदेश और गुजरात में शदीद गर्मी की लहर के लिए पेशगोई की है। और नई दिल्ली में आलमी पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री के दूसरे दिन मजीद 12 तलाई तमगे हासिल करने के साथ भारत की बढ़तरी जारी है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज महात्मा गांधी के दांडी मार्च को उजागर किया, जो 1930 में आज के रोज ही शुरू हुआ था। उन्होंने कहा कि जिद्दोजहद आज़ादी में ये एक अहम मोड़ था। जनाब मोदी ने कहा कि आज भी हम विकसित भारत के तवील और तारीखी सफर के ऐसे ही एक मकाम पर हैं। जनाब मोदी ने ये बात नई दिल्ली में 3 रोजा आलमी लीडरशिप फोरम एनएक्सटी चोटी कॉन्फ्रेंस 2026 से खिताब करते हुए कही। इस चोटी कॉन्फ्रेंस का आगाज एक निजी मीडिया तंजीम के जरिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन अहम चोटी कॉन्फ्रेंसों के दौरान होने वाले तबादले ख्याल विकसित भारत के रोल को पूरा करने में अहम किरदार अदा करते हैं।
21वीं सदी का एक कालखंड न भूतो न भविष्यति जैसा है। एक तरफ युद्ध की विभीषिका है, सप्लाई चेन फिर से तहस नहस हो रही है, संयुक्त राष्ट्र जैसी वैश्विक संस्थाओं की प्राथमिकता पर सवालिया निशान लग रहे हैं, और ऐसे कालखंड में हमारा भारत इन विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया इतिहास के जिस महत्वपूर्ण पड़ाव पर खड़ी है, उस पड़ाव पर जिस देश का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, वो है भारत।
पेट्रोलियम और कुदरती गैस के मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने मगरबी एशिया में जारी जंग के बायस तवानाई की आलमी फराहमी में खलल से मुतालिक जवाब देते हुए हुकूमत के जरिए किए गए इकदामात से मुतालिक आज लोकसभा में एक बयान दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुल्क की खाम तेल की सूरत हाल इत्मीनान बख्श है। नीज एलपीजी की अंदरून मुल्क फराहमी मुकम्मल तौर पर महफूज है। उन्होंने कहा कि 33 करोड़ कुनबों, खासतौर पर गरीब और महरूम लोगों को बिला रोकटोक एलपीजी गैस की फराहमी कराना हुकूमत की तरजीह है। वजीर मौसूफ ने कहा कि रिफाइनरी की हिदायत के जरिए एलपीजी की पैदावार में 28% का इजाफा किया गया है और मजीद का हुसूल इस वक्त जेर अमल है।
भारत के पास गैस की इत्मीनान बख्श पैदावार है, और जारी लड़ाई के इस माहौल में इस पोजीशन को बरकरार रखने के लिए फराहमी के इंतजाम हैं। हर एक घराने और सनत के लिए बिजली की पैदावार मुकम्मल तौर पर इत्मीनान बख्श है। ये बात काबिले जिक्र है कि भारत इससे पहले एलपीजी की जरूरियात का तकरीबन 60% खरीज के ममालिक से दरामद कर रहा था, और 40% पैदावार मुल्क में ही की जाती है।
जनाब पुरी ने कहा कि मगरबी एशिया की लड़ाई में कोई रोल न होने के बावजूद भारत को इसके नतीजे का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि आबनाए हुरमुज को तारीख में पहली मर्तबा कमर्शियल जहाजरानी के लिए फाल तौर पर बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मुल्क में पेट्रोलियम, डीजल, मिट्टी का तेल और हवाबाजी के टर्बाइन ईंधन की कोई किल्लत नहीं है। इससे कबल लोकसभा में अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी ने कहा कि एलपीजी से मुतालिक बड़े पैमाने पर अफरा तफरी है और रेस्तरां अपना काम करने में जिद्दोजहद कर रहे हैं, जबकि ख्वाजा फरोश भी मुतासिर हो रहे हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने यकीन दहानी कराई है कि मुल्क भर में ईंधन की सप्लाई बिला रोक टोक जारी है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में तेल की कंपनी ने कहा कि मुल्कीर पैमाने पर इसके तमाम ईंधन के स्टेशन पूरी तरह फाल हैं। उनके पास पेट्रोल, डीजल और दीगर पेट्रोलियम मसनूआत के इत्मीनान बख्श स्टॉक हैं और ये तमाम मसनूआत दस्तियाब हैं। उसने मजीद कहा कि ईंधन की तकसीम कंपनी के पूरे नेटवर्क में मामूल के मुताबिक जारी है। तेल की कंपनी ने सारिफिन पर यह भी जोर दिया कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें और पेट्रोल पंप पर गैर जरूरी भीड़भाड़ न होने दें। सारिफिन को सलाह दी गई है कि वो सिर्फ तस्दीक शुदा मालूमात पर भरोसा करें और मामूल के मुताबिक पेट्रोल हासिल करना जारी रखें। खाम तेल से लदा तेल का एक टैंकर आबनाए हुरमुज से बहिफाजत गुजरने के बाद गुज़श्ता रोज मुंबई पहुंच गया है। ये बहरी जहाज भारत आने वाला ऐसा पहला बहरी जहाज है जो अमरीका और इसराइल के ईरान पर हालिया हमलों के दौरान समुद्री आमदोरफ्त में कमी होने के बाद आबी शाहराहों से होकर भारत पहुंचा है। मुंबई बंदरगाह के हुकाम के मुताबिक ये टैंकर गुज़श्ता रोज मुंबई बंदरगाह पहुंचा। इस बहरी जहाज में 1,35,335 मैट्रिक टन खाम तेल लदा हुआ है और ये जवाहर द्वीप बंदरगाह में लंगर अंदाज हो चुका है, जहां तेल उतारने की कार्रवाइयों का आगाज हो गया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और ईरान के उनके हम मनसब सैयद अब्बास अराकची ने अपनी आखिरी बातचीत के दौरान बहरी जहाजों के तहफ्फुज़ और भारत की तवानाई के तहफ्फुज़ से ताल्लुक रखने वाले मामलात पर तबादला ख्याल किया। आज सहपहर नई दिल्ली में अखबार नवीशों को तफसीलात बताते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि दोनों वुजरा ने गुज़श्ता चंद दिनों में 3 मरतबा बात की है। जनाब जायसवाल ने बताया कि ईरान में तकरीबन 9,000 भारतीय बाशिंदे हैं और भारतीय हुकूमत ने बहुत से भारतीयों को तेहरान से महफूज मकामात पर मुंतकिल किया है।
जब युद्ध शुरू हुआ तो हम लोगों ने बहुत सारे लोग जो तेहरान में थे उनको हम लोगों ने वहां से अन्य शहरों में हम जाके उनको ले गए ताकि उनकी सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए। जो भी भारतीय नागरिक ईरान से वापस आना चाहता है हमारे एम्बेसी से वो संपर्क करें। हम लोगों ने एक एडवाइजरी जारी की है खास उन लोगों के लिए जो कि लैंड बॉर्डर से आर्मेनिया और अजरबैजान को पार करके वहां से वापस भारत आना चाहते हैं। तेहरान में जो हमारा मिशन है वो पूरी तरह से कार्यरत है और हमारे भारतीय समुदाय के साथ जुड़ा हुआ है उनके हित के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए।
तर्जुमान ने मजीद बताया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खलीजी खित्ते में बहुत से लीडरों के साथ लड़ाई शुरू होने के बाद बात की है। इस बातचीत में जनाब मोदी ने मुजाकिरात और सिफारतकारी की जरूरत पर जोर दिया ताकि जल्द ही अमन बहाल हो सके। जनाब जायसवाल ने शहरियों की हलाकतों को दरगुजर करने और शहरियों को तहफ्फुज़ फराहम करने की जरूरत पर भी जोर दिया। तर्जुमान ने बांग्लादेश को भेजे जाने वाले पेट्रोलियम की मसनूआत के सिलसिले में कहा कि भारत को बांग्लादेश से एक दरख्वास्त मौसूल हुई है जिसका जायजा लिया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत खासतौर पर अपने पड़ोसियों को रिफाइंड पेट्रोल की मसनूआत का बड़ा बरामदकार है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत को इस तरह की दरखास्तें दीगर बहुत से मुल्कों से भी मौसूल हुई जिनका जायजा लिया जा रहा है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई ने अपने पहले पैगाम में कहा है कि खित्ते में तमाम अमरीकी फौजी अड्डे फौरी तौर पर बंद कर दिए जाएं। ईरान के सरकारी मीडिया ने इत्तला दी है कि टेलीविजन पर एक खिताब में मुश्तबा खामनेई ने मजीद कहा है कि ईरान दुश्मनों पर दबाव बनाने के लिए आबनाए हुरमुज को आगे भी बंद रखेगा। उन्होंने अवाम के दरमियान इत्तेहाद पर जोर दिया। उन्होंने मजीद कहा कि ईरान अपने दुश्मनों से बदला लेगा। खलीजी तावुन कौंसिल GCC के ममालिक सिलसिलेवार हमलों के बाद आपसी तालमेल में इजाफा कर रहे हैं। उन्होंने खित्ते को दहाइयों में सबसे संगीन सलामती बहरान में धकेल दिया है। हुक्काम का कहना है कि 28 फरवरी को शुरू हुई इस जंग के बाद ब्लॉक सिफारती सालसी से फाल दिफा की पोजीशन में मुंतकिल हो गया है। इसके बाद से कई रुकन ममालिक ने स्ट्रेटेजिक बुनियादी ढांचे और शहरी इलाकों को निशाना बनाने वाले ड्रोन और मिसाइल हमलों की इत्तला दी है, जिससे वसी तर इलाकाई तनाजे के खतरे के बारे में खदशात पैदा हुए हैं। हालिया दिनों में सिफारती सरगर्मियों में भी तेजी आई है। GCC ममालिक के वज़राए खारजा एक मुत्तफिका रद्द अमल کو مربوط کرنے اور علاقائی سلامتی کے تعاون کو تقویت دینے کے لیے ہنگامی مشاورت کر رہے ہیں. تازہ ترین بات چیت میں توانائی کی اہم سہولیات کے تحفظ اور آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کی راستوں کے استحکام کو یقینی بنانے پر توجہ مرکوز کی گئی ہے. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
مارچ کے اوائل میں بحرین کے زیر صدارت ہنگامی اجلاسوں اور یورپی یونین کے ایک سربراہی اجلاس کے بعد جی سی سی نے تمام 6 رکن ممالک کے شہری اور توانائی سے متعلق بنیادی ڈھانچے پر بڑے پیمانے پر کیے گئے حملوں کی مذمت کی ہے. اس کے جواب میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے کل 13 ووٹوں کے ساتھ قرار داد 28-17 کو منظور کر لیا ہے, جس میں روس اور چین کی عدم شرکت کے باوجود علاقائی حملوں کی باقاعدہ مذمت کی گئی ہے. ہنگامی مشاورت کے دوران جی سی سی رہنماؤں نے ناقابل تقسیم سلامتی کے اصول کی توثیق یہ کہتے ہوئے کی کہ تمام رکن ممالک کی سلامتی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے, اور یہ کہ ایک رکن پر کوئی بھی حملہ سب پر حملہ تصور کیا جاتا ہے. کونسل نے اپنے مشترکہ دفاعی معاہدے کی دفعات کو بھی فعال کر دیا ہے, جس میں فضائی دفاعی رابطہ کاری, انٹیلیجنس شیئرنگ اور میری ٹائم مانیٹرنگ خاص طور پر ارد گرد کے علاقوں میں اضافہ کیا گیا ہے. ونود کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں تنویر.
آج وزیر اعظم نریندر مودی نے یوگ کو عالمی پیمانے پر وسیع طور پر تسلیم کیے جانے سے متعلق ایک قومی روزنامے میں آیوش کے مرکزی وزیر پرتاپ راؤ جادو کی تحریر کردہ ایک مضمون کو شیئر کیا. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ اس مضمون کے ذریعے جناب جادو نے اس بات کو اجاگر کیا ہے کہ پچھلی دہائی کے دوران کس طرح یوگ ایک روایتی تندرستی کی مشق سے شواہد پر مبنی نظام میں تبدیل ہوا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی کل آسام کے گوہاٹی سے پردھان منتری کسان سمان ندھی کی 22ویں قسط جاری کریں گے. زراعت اور کسانوں کی بہبود کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے آج نئی دلی میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے اس کا اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم تقریباً 9,32,00,000 کسانوں کے بینک اکاؤنٹس میں 18,660 کروڑ روپے ڈائریکٹ بینیفٹ ٹرانسفر کے ذریعے جاری کریں گے. جناب سنگھ نے کہا کہ حکومت نے کسانوں کو زراعت سے متعلق جامع معلومات فراہم کرنے کے لیے AI پر مبنی ڈیجیٹل پلیٹ فارم بھارت وستار کے پہلے مرحلے کا بھی آغاز کیا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی اس مہینے کی 14 تاریخ کو مغربی بنگال کا دورہ کریں گے. اپنے دورے کے دوران وزیر اعظم کولکاتہ میں تقریباً 18,680 کروڑ روپے مالیت کے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے اور سنگ بنیاد رکھیں گے. ان میں قومی شاہراہوں کے مختلف پروجیکٹ شامل ہیں جن کی مجموعی لمبائی 420 کلومیٹر سے زیادہ کی ہے اور جن کی مالیت تقریباً 16,990 کروڑ روپے ہوگی. بھارت کے محکمہ موسمیات IMD نے مدھیہ پردیش اور گجرات میں کل کے لیے شدید گرمی کی لہر کی پیش گوئی کی ہے. موسمیات کی ایجنسی نے کل اروناچل پردیش میں شدید سے بہت زیادہ شدید بارش ہونے کے لیے اورنج الرٹ بھی جاری کیا ہے. شمال مشرقی خطے چھتیس گڑھ, ذیلی ہمالیائی, مغربی بنگال اور سکم میں آئندہ 2 سے 3 دن تک بجلی چمکنے کے ساتھ گرج چمک اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے. عالمی پیرا ایتھلیٹکس گراں پری 2026 کے افتتاحی دن کل بھارتی ایتھلیٹس نے متاثر کن کارکردگی کا آغاز کیا. پیرالمپک چیمپئن پروین کمار نے مردوں کے T44 ہائی جمپ میں 1.96 میٹر کی چھلانگ لگا کر سونے کا تمغہ جیتا. مردوں کے ہائی جمپ T42 میں شیلیش کمار نے 1.84 میٹر کی چھلانگ کے ساتھ سونے کا تمغہ جیتا, جبکہ رام سنگھ بھائی گوپادیار نے 1.65 میٹر کے ساتھ چاندی کا تمغہ جیتا اور لوکیش منتر نے 1.60 میٹر کے ساتھ کانسی کا تمغہ جیتا ہے. اس طرح بھارت نے تینوں تمغے جیت کر کلین سویپ کیا. مردوں کو ڈسکس تھرو F11 اور F12 میں مونو نے 34.30 میٹر کی تھرو کے ساتھ سونے کا تمغہ جیتا, جبکہ پروین شرما نے 32.96 میٹر کے ساتھ چاندی کا تمغہ جیتا ہے اور سنجے ریڈی نیلم نے 30.15 میٹر کے ساتھ کانسے کا تمغہ جیت کر بھارت کو ایک اور پوڈیم سویپ دلایا. آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے نئی دلی میں این ایکس ٹی چوٹی کانفرنس سے خطاب کیا. انہوں نے زور دے کر کہا کہ بھارت وکست بھارت کی جانب سے اپنے سفر میں ایک اہم موڑ پر ہے. حکومت نے پارلیمنٹ میں یقین دہانی کرائی ہے کہ مغربی ایشیا جنگ کے مابین بھارت کے پاس توانائی کی فراہمی اطمینان بخش ہے. پیٹرولیم کے مرکزی وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے کہا ہے کہ گھریلو ایل پی جی کی پیداوار میں 28% کا اضافہ کیا گیا. مرکز گھرانوں کو یقینی فراہمی کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.